وقال كان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلم الثلاثة فما سوى ذلك فقط آية محكمة أو سنة قائمة وسنة قائمة وفريضة عادلة أي كما قال عليه الصلاة والسلام. ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اب ایمان ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہیں سے عطا کیا کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو وراثتاً ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت نصیب فرمائی کہ اللہ کا قرآن ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے پوری انسانیت اس وقت جو ہے اندھیرے میں بیچارے تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، اندر اندر سے جل رہے ہیں، گل رہے ہیں دین حق کی تلاش میں. ایک تبلیغی ساتھی انگلینڈ گیا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب سے جو انگلینڈ میں ہی رہتے ہیں، وہیں اب 20-30 سال سے وہاں کے نہیں ہیں لیکن اب وہیں کے ہو گئے، مجھ کو آپ سے ملنا تھا، فون کیا کہ مجھے ٹائم نہیں ہے کے لیے، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، اپنا کام کرو، میں اتنا بزی ہوں، میں کہاں سے فضولیات کے لیے وقت نکالوں گا، میں دور سے آیا ہوں، 5-10 منٹ 5 منٹ تو ملاقات ٹھیک ہے، فلان جی 5-10 منٹ میں زبردستی نکالوں گا، تو میرا وقت ضائع نہیں کرنا، ٹائم پر آنا، یہ وہ بڑا ہم گئے سلام دعاؤں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایسے ڈال دیتے ہیں، تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ سر اچھی تجھے لگ رہی ہے الفاظ کو جا کر دیں گے موقع، اس کا بولتا ہوں بہت سال ہوئے کو سنے بات ہاں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، لیکن ایک بار خدا کی طرف سے آپ اندر سے کتنے پریشان ہیں کتنا بتاؤ، بس یہ کہنا آپ اس کے کام کو میں آسمان آپ وہ ظاہر کیا ہے لوگ ٹائم یہ وہ انگریزی اینشنٹ ایشن سارا وہ سارا نقلی تھا، پیسہ بھی اس کے پاس پیسے نہیں پوچھتے عہدہ بھی اس کے پاس اور شروع جو ہوتا ہے بہت ٹائٹ وہ بھی वो अब दो ढाई घंटे तक डाटा का ही हो गए और वो 10 मिनट 5 मिनट समझना नहीं था और वही बोलते रहे मेरे बच्चे क्या परेशान है, मेरी बीवी कहाँ है, मुझे क्या है, मेरी जगह इतनी ये जायदाद है उसका ये है और मुझे सारा देखते जहरी ठहर गया अंदर से मुझसे कुछ आंख निकाल इसी तरह के हजारों वाक्यात हैं कि आप जिन चीजों को देखकर ललचाते तमन्ना करते हैं देखो ये लोग क्या ऐश करते ये लोग कैसी जिंदगी बिताते हैं या फ्री बोर्ड करके यहाँ है आप फ्री बोर्ड और उनसे मर्जी जानकर हम उनसे पूछे तो तकरीबन तकरीबन आपको 90% से ज्यादा दर्द भरी कहानियां सुनने को मिलेंगी अंदर से जल रहे हैं सारे और कोई उनको देने हक और जिसको आप क्या बोलते हैं आपकी सदा में पीस ऑफ माइंड अंदर का यकीन रखो उसको सोची सली की रखो हकीकी मुसलमान के अलावा किसी को नहीं ऐसा नहीं होता किसी को मैं ऐसा नहीं हाँ ये नहीं हमारा जैसा टूटा फूटा मुसलमान उनको परेशान ही रहता क्या मुस्ता क्या मुस्ता कर मुस्ता कर परेशान ही रहता हकीकी मुसलमान जिसने ईमान को समझा और ईमान के मजे को चखा उसके अलावा हकीकी राहत और सुकून किसी को नहीं अभी कुछ लोग अंग्रेज आए थे मुसलमान साहब भी थे साथ मैंने कहा वो हाउसबोट में ठहरे थे हाउसबोट में वो तो फाइव स्टार फैसिलिटी होती है तकरीबन बड़ा लक्जरी वक्सरी वो सारे इंतजाम खादी भी हैं जो चाहे वो दे दो और बजाय सब राहत तक मेरा देखो आपने यहाँ हो आप इतना हर चीज आराम और इसकी यहाँ मयसर है कहाँ है तो मैंने कहा लेकिन अंदर से आपकी दिल के अंदरूनी गोशे में आपको अजनबियत लगती होगी अंदर गोशे में ऐसा जाते ना कि बीच बीच ट्रेन जो अजनबियत लगती तो मैंने कहा मालूम है क्यों लगती अब यहाँ तो अब कहेंगे ठीक है अपने घर में भी आपको ये लगती होगी आप अपने घर में हैं और घर जो होता पूरा सुकून का होता है इंसान थक मान कर अगर कुछ खाने को नहीं मिले घर पहुँचा एकदम आराम से टांगे फैलाता तो आराम मिलता है किसी हद तक लेकिन फिर भी अपने घर में भी एक गुना जो है अंदर से जिसको कहते हैं तख्त शऊर या सब कॉन्शियस लेवल में कुछ अजनबियत लगती है सोचने लगे कहाँ ये भी शरीर लगती है ये तासुब वाले नहीं थे बेचारे थोड़े हद की तलाश कुछ लगते थे इसमें मौके किसी हद मैंने कहा आपको मालूम है ऐसा क्यों है धर्म भी ऐसे थी काम को मालूम नहीं, इंतजारों को तो कुछ भी मालूम नहीं। ये तो हकीकत से अनपढ़ होते हैं। ये शायरी में डॉक्टर जो कोई बड़ा ये हो, किसी और में कुछ हो, किसी और में कुछ हो, बड़ा मायन हो दुनिया की, ये तो ऐसे अपन बेचारे तो खा लिया करते हैं, इनको क्या है, कुछ नहीं इनके पास। सोचने लगे इसको कि ये अजनबी तो है, इसमें क्या वजह है। मैंने कहा कि आप रूप को मानते हैं, स्वरूप को मानते हैं, आप मानते हैं जैसे आप रूप ज्ञानदार रूप होती है स्वरूप। मैं कहा ये जो रूप है या स्वरूप, ये जब इस जिस्म में आई इससे पहले कहा थी। अक्सर बेचारे सोचते हैं कि जो इस जिस्म में ये रूप आई इच्छी का निरंतर मैं बोलूंगा ये खुदा के पास, ये रूप अल्लाह के पास। तो गोए इसका घर वहां आसमी, तो गोए यहाँ ये अजनबी, ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। असली वतन जो है वतन असली, और यहाँ ये इसलिए अगर आप लोग भी अपने अंदर महात्मा देखोगे सोच लोगे तो हर वक्त आप सख्त शऊर में सब कॉन्शियस लेवल में उनको लगेगा कुछ अजनबी अच्छी लगेगी। 100% 100% होमली नहीं लगेगा, इंसान दुनिया में हो नहीं सकता। एक किस्म का अजनबी होता है, और ये जो अजनबी समझते हो यानी अपने को परदेशी समझना, स्ट्रेंजर समझना, अब ये अजनबियत जो है यही इसको कामिल सुकून से मान्य बनती है, रुकावट बनती है। पूरा सुकून जो घर में मिलता है, अब चूंकि ये सब असली घर नहीं है, ये जिस्म रूप का या ये दुनिया, ये तो इसका आरजी वतन है। इस रूप को इस जिस्म के साथ जो मुंसलिक किया गया है, अल्लाह की भी कारीगरी क्या है, अल्लाह ताला की सनअत भी क्या है कि जिस्म इसको गंदे चीजें बनाए, गंदे पानी से और फिर गंदे खून के धोखे से, जिसको कुरान ने कहा खालत और मिन अलग, अलग से पैदा किया। अलग कहते हैं थोड़ा सा जमा हुआ खून, और खून क्या होता है, नजस होता है। अगर खून कपड़े में लगेगा नमाज नहीं पड़ेंगे, धोएंगे तो इस नजस गली चीज से इंसान के जिस्म को बनाया। और इस जिस्म में ये सारी गलावतों की सिफतें मौजूद जिसे ये बना, और वहां रूह कुल रूह में नाम रखती, और रूह कहां से बना संभव हमारे रंग से। अब इसमें तो कोई बजाय रूह की नूरानियत और उलूबियत यानी बुलंदी, ये तो बेइंतहा है, और जिस्म की कसाफत और खलासत ये अब इनको जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया जब न रोग को असर हुआ इसकी गलाजत का न इसकी गलाजत को, लेकिन फिर भी ये साथ था कि कारखाना ये कुदरत से आप कैसे अल्लाह ताला अहसन खालिकी, अपने मौला की खालिकियत को समझना कोई आसान काम नहीं। गोया ये रूह जो है इस दुनिया में अजनबी है, ये इसका वतन असली नहीं। अगर आप इसको अपना वतन असली दिखाओगे, इसको सुकून मिलता है, तो घर याद आता है। آپ کسی سے پوچھو وہ سال ہر سال سے امریکہ میں رہتا ہے, ایک دن وہ کسی جگہ سے کوش روانون سنتا ہے, اس کو کیسا سکون ملتا ہے, ساری گھر کی یادیں تم لوگ اور پھر ان کو کرتا ہے گھر کا اور تھوڑا کہ آپ کو اپنی کشمیری چائے پیش کرے. اب یہ چائے پرانے لوگوں کو معلوم ہے امریکہ یورپ میں اگر کوئی کشمیری کسی کشمیری کو دعوت کرے گا تو سب سے افضل اس کو جو کھانے کی چیز اگر وہ پیش کرے گا وہ نہیں چاہے اور بچا وقت نہیں چاہے, یہ بڑی دعوت مانی جائے گی کیوں یہ اپنے گھر کی چیز ہے, اسے گھر یاد آتا ہے, اسے اس کو سکون ملتا ہے. اسی طرح سے یہ روح کو اگر ہم گھر کی چیز دے دیں گے اس کو سکون ہے. اسی لیے قرآن کریم نے اسی بات کو بہت آسان الفاظ میں آرام ذکر اللہ سکنے بالکل قرآن کریم نے بہت آسان الفاظ میں اسی بات کو سمجھایا. اصل میں اس کی حقیقت یہی ہے, الا کان کھول کر سن لو بے ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے تطمئن قلوب, ایک ہی چیز ہے جو آپ کو سکون کامل دے سکتی ہے. آپ نے دیکھا دنیا والوں کے پاس جو دنیا ہے ان کے اندر سے وہ کتنی پریشانیاں, یہ چیزیں ان کو سکون نہیں دے رہی ہیں. اب بیچارے بھٹک رہے ہیں, کبھی ہندوستان آتے ہیں تو ہندوستان کے جنگلوں میں جاتے ہیں, جوگیوں کے پاس جاتے ہیں, کبھی یوگا کرتے ہیں, کبھی بدھوں کے پاس جاتے ہیں ان کے ان میں بیٹھتے ہیں, کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, لیکن آخر ملتا کچھ نہیں. اور جن کے پاس ہیں وہ امت سوری ہوئی ہے, جن کے پاس ہے ان کو خود خود کو بھی خبر نہیں ہمارے پاس, یہ المیہ ہے مصیبت یہ. جن کے پاس یہ دولت ہے ان کو خود بھی نہیں پتا ہمارے پاس ہے, کیونکہ وہ خود پریشان ہے. بزرگ کا واقعہ ہے, تو لطیفہ ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو حملہ کرنے آئے تو وہ لوگ بھاگ گئے, خود ہی بھاگ گئے, اس طرح کہتے بیٹھے ہیں وہ لوگ بھاگ گئے, بزرگ ہی کیوں بھاگ گئے. آپ انہوں نے دیکھا, بزرگ نے دیکھا تو وہاں شیر دیکھا, لوگوں نے شیر دیکھا وہ بھاگ گئے, اور بزرگ نے شیر دیکھا یہ بھی بھاگ گئے. حالانکہ وہ اسی بزرگ کی کرامت تھی اللہ تعالیٰ نے شیر کو, لیکن ان کو نہیں کہ یہ میری کرامت, اس کو بھی نہیں خبر, وہ بھی بھاگ گئے. اسی طرح مسلمانوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا ہے, کیا ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے, آپ نے بھی شاید پہلے سنا ہوگا مجلسوں میں یا کتابوں میں پڑھا ہوگا. ایک لڑکا تھا, اس کا نام تھا ابو سعید, کیا نام تھا, ابو سعید تھا نام. گنگو ہے یو پی میں ایک جگہ, جہاں جگہ گنگو ہی وہیں رہتا, نوجوان لڑکا ابھی دین کی طرف نہیں آیا, ابھی آگا کر تو ایک گڑیا چلی وہاں سے, اب اس کو ٹھوکر مارا. اب اس لڑکے اب اس بڑھیا نے کہا وہ تکبر کیا کرتا ہے, جیسے دادا کی وراثت پائی, یہ لڑکا سوچنے لگا میرے دادا کی وراثت اور اس لڑکی اسے کیا کہا, اور گھر گیا ماں کو کہنے لگا کہ مجھے دادا کی وراثت چاہیے, مجھے دے دو. ماں سمجھ گئی, سمجھدار تھی, ماں نے کہا وہ بلخ میں ہے, بلخ مین سینٹرل ایشیا میں जगह ये जो लड़का था ये हजरत अब्दुल कुदूस गंगोही रहमतुल्लाह ने जो कुतुबुल आलम के अपने जमाने में उनका पोता था ये, और हजरत अब्दुल कुदूस गंगोही रहमतुल्लाह के जो खलीफा थे वो थे हजरत बल्खी। तो दादा ने किसको बड़ा थे हजरत बल्खी को, और वो गए वो लेकर बल्ख। अब इस लड़के को ये बलख गया, वो मुझे नहीं कहना, वो लंबा चौड़ा मसला है, उसने क्या क्या मेहनतें की उस विरासत को पाने के लिए। सुनना चाहूंगी फिर से, सुना होगा कहीं, मुझे याद है नहीं, चलो फिर कहें। ये लड़का जब गया बलख, हम वहां जो हजरत बल्खी थे शेख बल्खी रहमतुल्लाह, उसने सुना मेरे शेख का पोता आया। अब उसने कहा मुझे इसके इस्तकबाल में जाना चाहिए। तो पुराने जमाने में शहर होता था, शहर से बाहर एक जगह होती थी इसका गेट होता था, तो वो चले तो उस गेट से इसको इस्तकबाल करें। अब मुरीदों ने सुना शेख जा रहे हैं तो वो भी चले। अब बाजार वालों ने देखा हजरत शेख कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इसके पोता आ रहा है शेख का, उसके तो बाजार लोग भी चले। अब शहर में हंगामा हो गया, चले गए क्या शोर है, हजरत शेख जा रहे हैं लोग भी जा रहे हैं, बात करने का मैं भी चल रहा। तो सब इस लड़के के इस्तकबाल के लिए। अब उसको घोड़े पर बिठाया और हजरत खुद उसकी लगाम लिए हुए उसको शहर से पूरे इज्जत इकराम से लाया, बिठाया, नहा धोया, उसको मसनद बिछाई और खुद हजरत उसके सामने अदब से बैठे। छोटा नौजवान दो तीन दिन के बाद कहा अच्छा बेटा बताओ कैसे आए, और मुझे दादा की बड़ा से चाहिए दादा की, तो हजरत समझ गए। अब कहा इसको अस्तबल में रखो, जमाने में घोड़े ओड़े रखने की जगह कि ये वहां खिदमत करेगा गोरों की। अब इसको गोरों की खिदमत में लगाया, अब वहां करता रहा विचार। तो फिर एक औरत को कहा जो बंगी खाकरो उसका कहा कोड़ा कर करता ये ले लो टोकरा और किसी तरीके से इस लड़के पर डाल देना। अब इन्होंने ये औरत गई और कुछ बहाना किया तो अब ये लड़का देखता है वो लड़का गोंगुआ तो दिखा देता है, उसी गोंगुआ से तो दवाई भी छिड़ी। मैं कौन शाह, तो उस औरत ने हजरत से कहा कि उसने ऐसे कहा। अच्छा हदीस की तरबियत नहीं होती, हदीस तकब्बुर के अंदर, ये इसके तकब्बुर का इलाज हो रहा था, इसके अंदर जो तकब्बुर की जलादत उसको कैसे निकाला जाएगा, ऐसे ही वरासत मिलती है। वरासत लेनी है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। अब ये वहां फिर चलते हैं अस्तबल में काम करते हैं, तो कुछ अर्सा हुआ कहा फिर जा। अब वहां काम क्या था, घोड़ों का पीछा पाकाना साफ करना, अस्तबल को साफ करना, घोड़ों को खाना चलाना, ये सब काम था। तो उस औरत को कहा फिर डाल देना, तो फिर डाल दिया। अब इसकी बारिश ने उसको घूर के दिया, दो रखी, अब जबान नहीं चलाई, जबान से कुछ नहीं था, पहली बार जबान चलाई अब जबान नहीं चलाई, लेकिन बहुत घूर से अभी तक अंदर में। फिर कुछ अर्सा हुआ तो इसने शिकायत की कि जो अस्तबल में नाली है वहां से दिल्ली घुसती, तो क्या करा रात को होशियार हो क्या करते हो, ये आपका काम है। अब बेचारा ने अपना स्तर रखा जो उसका पाइप था ना, उसके ऐसे उस पाइप के बाहर ऐसे सो गया बेचारा, नहीं नींद आ गई। सुबह पाइप में ब्लॉक हुआ, पानी जमा हुआ, सुबह पात्रों से जगह पानी जाए तो उसने कूड़ा करकट जमा करके टोकरे में उठाया, किसी बहाने से फिर डाल दिया इसको। अब ये लड़का खड़ा कहता हूँ मुझे माफ करना, और मेहनत जाया हो गई तो इससे कितनी गलती होगी। अब वो कर जमा करें कूड़ा करकट उस टोकरी में डाल रहे हैं और उसे माफी मांग रहे हैं। देखा कहाँ से कहाँ पहुंचे, तब ये समझे नहीं समझे, पहले क्या गुस्सा करते थे है? इसी का नाम तरबियत है और इसी का नाम दरवेशी भी है। दरवेशी खाली गरीबों का नाम नहीं कि जो अंदर गलावते हैं उनको कैसे निकाला जाए। और बड़ी गलावत गुस्सा होती है, माँ के साथ गुस्सा करता है, बाप के साथ गुस्सा करता है, दोस्तों के साथ गुस्सा करता है, और थोड़ी सी नमाजें पढ़ना शुरू किया और भी तकबर बढ़ जाता है, सबको काफिर कहता है, सबको बेदीन जानने में और गुस्सा करता है। ये गुस्सा जहन्नम को लेता है। जब गुस्सा आता है क्या होता है देखा है, चेहरा सुर्ख होता है, हाथ सुर्ख होते हैं और इनमें पसीना आता है और ये गर्म होते हैं। ये सब किसकी निशानी? गर्मी की। गर्मी किसकी निशानी? आग की। और आग कहाँ से पैदा होती? जहन्नम से। तो गुस्सा जहन्नम से हुआ, जहन्नम से हुआ। अब देखो हदीस शरीफ में क्या आया, जब गुस्सा आ जाए वजू का, हिकमत समझे, आग बुझ जाती है पानी से, अब जब गुस्सा तो इसको क्या पानी से हो जाएगा। अब शायद कुछ रबत मालूम हो महसूस होगा इस हदीस का कि गुस्से और वजू में क्या आपस में रबत है। और दूसरा इलाज भी गुस्से का हदीस यहाँ है, पता है कि अगर खड़े हो बैठ जाओ या लेट जाओ, अब उसको इससे क्या है कि जितना मिट्टी के साथ करीब हो जाओगे, मिट्टी में नरमी है, नरमी भी नरमी आ जाए मिट्टी में, जमीन में, और उसको मारो कुछ भी करो, बिना चाहे चीर कर फाड़ कर निकालो, जमीन बेचारी कुछ कहती नहीं है, वहां नरमी है ना। फारसी का मशहूर शहर है कि मुझे पूरा याद नहीं है फारसी क्या था, एक जमाने में पूरी उम्र तुम क्या रहे बड़े समझे, थोड़ी देर के लिए खाक बाशी बन जाओ फिर दे उम्र तो गुजारी संग दिली में, यक जमाने संगे जब खराश है देते ही, यक जमाने खाक बाश इस तरह क्या था। गुस्सा आ जाए तो वजू करो, हदीस जो होती है ये वहाई के जरिए, ये अल्फाज और ये इलाज चाहे हमारे समझ में ना आ जाए लेकिन ये जिसको यकीन होगा बराबर वो चीज मिल जाएगी उसको। हदीस में आया है कि अगर कोई ऐसा पढ़ेगा उसको ऐसा होगा, यकीन होगा जरूर हो जाएगा। अब उसको मिलता नहीं है उसके यकीन की कमजोरी, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे यकीन की कौन, हदीस में कोई न कुछ नहीं होना जिंदा। तो गुस्सा जो है, अब जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता है उसको ज्यादा मुजाहदे की जरूरत है। तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, किसी को तबीयतन ज्यादा गुस्सा नहीं आता, किसी को तबीयतन ज्यादा गुस्सा आता है। तो जिसको ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या है जरूरत है मुजाहदे, क्योंकि ये गुस्सा जो है ये जहन्नम में ले जाता है, जहन्नम की शिकायत, जहन्नमी की शिकायत, जन्नतियों की नहीं, आग से पैदा होता है समझे। अब इसको निकालने के लिए देखो कैसी ہو رہی ہے, اسی لیے آپ کہیں گے وہ آیا لڑکا, اس کا استقبال کیا, وقتبر میں کیا رکھا. حضرت نے دیکھا یہ لڑکا ابھی نوجوان ہے, اس میں تکبر بڑا پڑا ہے, غصہ بڑا پڑا ہے, اور وہاں گنگوں میں بھی اس عورت کو ٹھوکر ماری, اس عورت کو بھی کیا کہا, نہ ہوتا گنگوا تو دکھا دے. اور جب تک یہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی, تو اسی طرح سے جو وراثت دین کی ہم کو ملی ہے, پہلی دین اسلام کی, ایمان کی وراثت ملی ہے, اب اس ایمان کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے تو اس میں مجاہدہ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ خدا نہ خاصا یہ وراثت حاصل نہیں کی تو خسارہ آ گیا, دنیا سے خسارے میں چلا گیا, اور موت مولا کلیم صدیقی دامت برکات ان کے ہاتھوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے, ہزاروں لوگ. اللہ نے جو جسے کام لیتا ہے, جب اس کے پاس کوئی آتا ہے, اب کوئی فون کرتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں اب جاننا چاہتا ہوں, اور اسلام کے بارے میں مجھے کچھ یہ میں متاثر ہوں اسلام سے, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, تو آپ مجھے ڈیٹ دیجئے, ٹائم دیجئے, میں کب آؤں. اگر آپ بعد میں آؤ پہلے کلمہ پڑھو, مجھے تو ملاقات جب میں آپ سے آؤں گا تو آپ اتنی جلدی کیا, کہاں جلدی بہت ہے, آپ نے بہت دیر کی ہے, کہاں نہیں گئے, آج ہی آؤں گا, آ جاؤں گا. لیکن آپ کو کیا معلوم آپ راستے میں زندہ رہیں گے یہاں تک پہنچیں گے, آپ کو کیا معلوم, دیر مت کیجیے, نہیں ملاقات تو حضرت دیجیے, ہاں آپ آ جائیں کوئی بات نہیں, لیکن سارے کلام پڑھ لیجیے, اگر راستے میں کچھ ہو گیا. جہاز میں ایک ملا تھا, جہاز میں ایک شخص ملا, وہ انگریز, اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب کا آدمی ہے, چلو لمبا سفر ہے, اسی کو تنگ کر دیں. کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا کریم صدیقی. کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام اسامہ ہے. اچھا تنگ کرنے کے لیے اس کو اسامہ بن لادن کے نام کا نام انگریز نے کہا, وہ انگریز تھا تو سمجھنا چاہتا میرا نام اسامہ ہے. اگر اس نے لکھا ہے اپنے وہ ارمغان جو ان کا آتا ہے, اس نے لکھا کہ میں نے دل میں کہا جب تک اس کا نام اسامہ نہ کر دو جہاز سے نہ اتروں گا.
وہ تو ایمان لانے کی چیز ہے,
कैसे देर करते हैं, ये करते अब करूँगा अभी परसों से करूँगा, ये कैसे आएगा इनको ये काम व्यापार हो या पूरा हो। तो ये बहुत मुश्किल मसला है ख्याल देना, ये बीमारी है उम्मत की। बीमारी ये है कि हम छीन से बहुत अच्छा है लेकिन हम कम से कम सबसे कम ये यहाँ से बात करूंगा उसके बाद से करूंगा, पहले वो काम होने दो पहले ये काम होने दो। ये चालों को शैतान करवाता है, दीन हक को समझा तो दीन हक तो है, ईमान है, अब किस चीज की देरी है अमल करने में। तो अमल करने में सबसे पहली चीज क्या है, ये तो मेरा असल मौजू होने से शुरू किया था। ईमान के बाद अब अमल करना है। मैंने अभी जुमा में भी ये बात कही कि मैंने बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जब शुरू की, इमाम बुखारी बहुत माने जाते हैं। अब उनका मुकाम इतना बड़ा क्यों है कि उनकी जो नजर है वो बहुत गहरी है, आम मुहद्दिसीन और आम उलमा वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। अल्लाह ने बहुत उमुक दिया था कैसे दी की नजर में और फिल्म में, और कोई जुमला और कोई ये बगैर किसी हिकमत के मुश्किल है जो उनके यहाँ। अब उन्होंने जब अपनी किताब को शुरू किया तो सबसे पहले किताबुल वही को लाए, सुनाए वही से शुरू। तो उलमा ने जो है शुरू कर दी भाई क्यों ऐसा किया, बहुत सही पर किताबों की किताबें हैं इसको चलाओ क्यों शुरू किया। तो खुलासा ये निकाला कि दीन का दार मदार वही पर है, दीन का मदार असल वही पर है, कुरान हदीस पर है। तो इसलिए वहां से शुरू किया कि असल मदार भी वही ये बताना चाहते हैं। और दूसरा किताब वही के बाद किताब ईमान लाए। अब फिर बहस करती शुरू उलमा इकराम तो फिर कहा कि देखो वहाई जब समझ गया तो ईमान आना है, अब ईमान आना है क्योंकि आगे जो अमले करने हैं वो ईमान के बगैर काम नहीं आएंगे। जब ईमान होगा तो अमल, तो अब ईमान आया। तो ईमान आने के बाद अब क्या करना है, पहले किताब वाहि बोला है वाहि को मानना है फिर वह चारा नहीं है, फिर किताब ईमान को लगे ईमान को लाना है, जितने भी अमल करना होंगे फिर दार बोला ईमान पर हो। अच्छा ईमान के बाद क्या करना है, नमाज पढ़ना है, क्या करना है तो किताब के दिन बोलाए, किताब तलाक के पहले किताब के दिन बोलाए कि ईमान के बाद अब आप लोगों का काम है इधर मा सकता है। और जो हदीस मैंने पढ़ी उसमें इस दिन की ये बताई गई है हकीकत कि इस दिन की नींद है तीन चीजों में, कुरान आयतुल मक्का सुन्नतुल कायमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और फरियतुल आजला, ये तीन चीजें समाजिका के बाद फर्ज है। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा ये मुख्तलिबात में कोई मेडिकल पढ़ेगा कोई मैथ पढ़ेगा कोई कुछ पढ़ेगा कुछ पढ़ेगा, ये मबालूम है जो असल हकीकी बुनियादी उलूम है वो कुरान हदीस और फर्ज इनसे निकलने वाले। अब इन उलूम तीन में हम लोग क्या है बेबहरा, अगर मैं जीरो को हूं तो कोई मुबालगा है, रेजोल्यूशन नहीं हुई। आप कर रहे हो, हमने अगर मैं ये कहूँगा कि हम सिखा रहे हैं,
और ये जो मौलाना करीम
फिर जिंदगी का आपको कैसे पता आपको फिर वापस मिलेगा। तो इसको याद रखो कि हम दीन पर हमें पूरा पूरा चलना चाहिए। अब हम आधा चलते आधा नहीं चलते हैं तो ये कब तक चलेगा, जिंदगी क्या पता कब साथ हो जाएगी। कोई है ये चीज पता? या अय्युहल्लज़ीना आम